मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 22 मई 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं कल के ही अपने टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहूंगा और कल मैं आपसे इस बहुत ही छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहा था कि चाय बनाने जैसे सामान्य से मामलों में भी हम कैसे नए नए प्रयोग कर सकते हैं और केवल एक दो नहीं बल्कि कई कई प्रयोग कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि मैं जो प्रयोग की बात कर रहा हूं वो कोई आपको वैज्ञानिक बनाने के लिए या बनने के उपाय करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरे यहां प्रयोग का संबंध केवल हमारी जिंदगी के टट के पन से है कि किस तरीके से हमारे जीवन में लगातार नयापन बना रहे, इसमें उत्साह का संचार होता रहे, हम अपने आप को ऊबने से बचा सकें। क्योंकि जब ऐसा होता है तो हमारा जो मस्तिष्क है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है, ज्यादा सक्रिय रहता है। और सीधी सी बात है कि यदि हमारा मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय है तो मान करके चलिए कि हमारा शरीर भी अधिक सक्रिय है। और अगर मस्तिष्क और शरीर दोनों सक्रिय हैं तो जीवन का स्वरूप कैसा होगा इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। बचपन में देखिए बच्चे के साथ क्या होता है, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे अगर वो बीमार न हो या कोई और मानसिक परेशानी न हो तो आप देखिए कि वो लगातार उत्साहित रहते हैं। सोच करके देखिए कि क्यों उत्साहित रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सक्रिय रहता है। वो जैसे ही बाहर आए हैं मां के गर्भ से और दुनिया को देख रहे हैं तो दुनिया की हर चीज उनके लिए नई है, हर चीज के प्रति वो जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, हर चीज के बारे में वो पूछना चाहते हैं। और अगर वो पूछ रहे हैं इसका मतलब है कि उनका दिमाग सक्रिय है। और जैसे ही दिमाग सक्रिय होता है तो आप देखिए कि वो कहां चैन से बैठते हैं, उनका शरीर भी सक्रिय रहता है। और चूंकि ये दोनों सक्रिय हैं दिमाग और शरीर तो स्वाभाविक तौर पर आपको उनके अंदर एक अलग किस्म का उत्साह दिखाई देगा, एक अलग किस्म की ऊर्जा दिखाई देगी, उनके चेहरे पर एक अलग किस्म की खुशी दिखाई देगी। अब यह बात अलग है कि जैसे ही हमारे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं वैसे ही हमने उनको कुछ ऐसे तनाव के गड्ढे में डाल दिया है कि बेचारों की यह खुशी काफूर हो गई है। तो मैं इसी बात को ध्यान में रख करके कल की बात को अब आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी मित्रों, आज मैं उसे दोहराना चाहूंगा क्योंकि यह इस जो बात कही जा रही है उसके केंद्र में है। वह यह कि जब हम किसी भी चीज को टोटलिटी में देखते हैं, संपूर्णता में देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें भला प्रयोग की क्या गुंजाइश हो सकती है। लेकिन जब हम उसे टुकड़े टुकड़े में देखना शुरू करते हैं तो पता लगता है कि अनेक पगडंडियां निकल गई है, पगडंडियां ही पगडंडियां निकल गई हैं जिन पर चल करके हम नए गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने कल कुछ चीजों की चर्चा की थी, आज मैं उसे ही आगे बढ़ाना चाहूंगा। अब आइए हम देखते हैं कि जब हम चाय बनाते हैं तो उनमें हम किन किन तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, कंपोनेंट उसके क्या क्या होते हैं, क्योंकि कंपोनेंट को बदल करके भी हम बहुत से प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल कंपोनेंट को बदल बदल करके ही हम प्रयोग कर सकते हैं बल्कि उसके आपस के अनुपातों में भी परिवर्तन ला करके हम बहुत अधिक परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर चलिए हम दूध को लेते हैं। कई तरह के दूध होते हैं, आप सीधे ग्वाले से दूध खरीदते हैं और वो भी भैंस का दूध अलग और गाय का दूध अलग। आजकल जो है मदर डेयरी के दूध आने लगे हैं, पैकेट्स में दूध आने लगे हैं, तो उसमें आप अमूल का अलग से खरीद सकते हैं, सरस का अलग खरीद सकते हैं, सांची का अलग खरीद सकते हैं। ऐसे अलग अलग ब्रांड के दूध होते हैं और याद रखिए अलग अलग ब्रांड के दूध से जब आप चाय बनाएंगे तो आपके चाय का स्वाद भी अलग अलग होगा, राइट। तो अब प्रयोग के मामले के लिए आपको इतने से दूध की आपको इतनी वैरायटीज मिल गई। और केवल दूध की इतनी वैरायटीज नहीं, आप एक काम कीजिए, जैसे गर्मी के दिन है आप सुबह दूध लेते हैं, दूध को उबालिए और उबाल करके आप फ्रिज में रख दीजिए और आज शाम को या कल सुबह उस उबले हुए दूध से चाय बनाइए, चाय बन जाएगी। और फिर कल सुबह जो आपके पैकेट में दूध आया, जो ताजा दूध आया है, आप उससे चाय बनाइए, आप देखिए कि दोनों के स्वाद में फर्क आ जाएगा। मतलब मुझे तो कम से कम जो उबले हुए दूध की चाय है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, मैं अपनी बात बता रहा हूं और मैंने इस पर प्रयोग किए हैं। उबली हुई चाय को मैंने बहुत कोशिश कर करके स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की लेकिन मैं फेल हो गया और मैंने फिर समर्पण कर दिया। आप करके देखिए, आपको वहां नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद दो तीन चीजें और बच जाती हैं दूध के बाद, फिर चाय पत्ती, चाय पत्ती कोई एक ही ब्रांड की नहीं आती, पता नहीं कितने ब्रांड की चाय पत्ती आती है उसमें। आप रेड लेवल से लेकर के वह ताज, ताज गोल्ड और बाघ बकरी और पता नहीं कितने कितनी तरह की चाय आ रही है, आप उनके प्रयोग करके देखिए और फिर आपको पता लगेगा कि यार किस ब्रांड की चाय पत्ती से चाय बेहतर बनती है। करके तो देखिए, उनके छोटे छोटे पैकेट ले लीजिए, ज्यादा बड़े पैकेट नहीं। और देखिए, मैं यहां जो बात कर रहा हूं वो स्वादिष्ट चाय बनाने के लिए कर ही नहीं रहा हूं, इसको आप बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं स्वादिष्ट चाय की बात कर रहा हूं, नॉट एट ऑल। मैं जो बात कर रहा हूं वो केवल प्रयोग की संभावनाओं की बात कर रहा हूं, राइट। अब चाय हो गई, इसके बाद फिर चीनी भी है। अब चीनी आप कितनी डालेंगे, चलिए चीनी भी ज्यादा प्रकार की तो होती नहीं है लेकिन दो तीन प्रकार की तो हो ही जाती हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं, आप थोड़ी सी चीनी डालिए और थोड़ा सा गुड़ डालिए, लेकिन जो गुड़ हो वो गुड़ यानी शक्कर जिसको कहते हैं वो गुड़ हो, क्योंकि जो केमिकल्स से साफ किया गया गुड़ रहता है उससे आपके चाय के फट जाने का खतरा भी हो सकता है। तो आप चीनी पर भी प्रयोग कर सकते हैं, मीठे पर प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आते हैं कि अब आप चाय को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसके टेस्ट को बदलने के लिए और क्या क्या चीजें ला सकते हैं। उसमें आप बकायदे दालचीनी डाल सकते हैं, उसमें बकायदे आप इलायची डाल सकते हैं, उसमें आप बकायदे अदरक डाल सकते हैं, उसमें बकायदे आप अदरक के साथ काली मिर्च कूट करके उसे डाल सकते हैं, इन सारी चीजों को डाल सकते हैं, इनमें से कुछ चीजों को डाल सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं, बाजार में चाय का मसाला भी मिलता है, आप उस मसाले का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि जब हम चीजों के बारे में सोचते हैं कि चाय में हम क्या क्या डालें, तो फिर से हमारे पास प्रयोग करने के लिए ढेर सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब जब हम इन सबको कर लेते हैं तो अब यह होता है कि हम उसको कब कब डालें। उदाहरण के तौर पर आप पहले केवल पानी उबालें और इसके बाद उसमें दूध डालें, और जब सब उबलने लगे तो फिर आप बाकी चीजें यहां डालें, यानी कि चाय पत्ती, चीनी और ये जो दूसरी चीजें मैं बता रहा हूं ये तब डालें। ये भी हो सकता है कि आप शुरू में सब डाल करके छुट्टी पालें क्योंकि उसको तो उबलना ही है, फिर इसके बाद उबलने दें। यहां भी आपके पास प्रयोग के तरीके हैं। फिर आप उसको कितनी देर तक उबालेंगे, यहां भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, अपने चाय को मध्यम आंच में रख करके थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और उसे उबलने दीजिए, खोलने दीजिए। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद आपके उस चाय से एक अलग किस्म की बड़ी खूबसूरत सुगंध फैलने लगेगी आपके कमरे में, करके देख लीजिएगा। चाय जितनी ज्यादा खोलती चली जाएगी उतनी ही ज्यादा वो सुगंधित होती चली जाएगी, और मजेदार बात है कि उतनी ज्यादा स्वादिष्ट होती चली जाती है, उतनी ज्यादा स्वादिष्ट होती चली जाती है। लेकिन आपको मध्यम आंच में उसे पकाना पड़ेगा, अगर आप बहुत तेज आंच कर देंगे तो फिर वो उफन करके वो गिर सकती है। तो अब यहां आंच के भी प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने कल थोड़ी सी चर्चा की थी। अब आपकी चाय बनकर के तैयार हो गई, आप उसे सीधे भी छान सकते हैं। यहां आपको लगता है कि चाय से तो अभी भाप उठ रही है, तो इस भाप को रोका जाए तो थोड़ी देर के लिए आप चाय को ढक्कन से ढक दीजिए, हार्डली एक मिनट के लिए, तो उसकी जो भाप है, उसकी जो सुगंध है वो आपकी चाय में मिल जाएगी। ये भी एक प्रयोग कर सकते हैं। और आप यही प्रयोग करके देखिए कि चाय उबली है, छान के पीजिए, और चाय उबली है उसे थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए और फिर छान करके पीजिए, उसमें भी आपको स्वाद में फर्क देखने को मिल जाएगा। तो मित्रों, एक छोटी सी बात थी, छोटी सी चीज थी, छोटी सी प्रक्रिया थी चाय बनाने की। अभी बताते समय मेरे दिमाग में जितनी भी बातें आई वो सब मैंने आपके सामने रख दी हैं, और वैसे आप जब सोचेंगे तो और भी नई नई आपको तरीके, नए नए प्रयोग दिखाई देने लगेंगे। तो मित्रों, अब मैं चाय बनाने के प्रयोग के इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं, और मेरा अर्ज केवल इतना है आप सबसे कि आप जो भी काम कर रहे हों उसमें नया ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको उसमें नयापन मिलेगा। और मैं इस बात के लिए अपने प्रिय श्रोताओं के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने मेल से मुझे इस विषय की प्रशंसा करके उत्साहित किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।